पहला इतिहास अध्याय 13। अध्याय 13 में दाऊद कहता है, यदि तुम्हारा उद्देश्य मुझे राजा बनाने का है और यदि ये तुम्हें अच्छा लगे और प्रभु की इच्छा हो तो हम परमेश्वर की वाचा के संदूक को वापस लाकर यरूशलेम में मिलाप वाले तंबू में रखें। इसलिए वे संदूक को किर्यात यारीम से ले आए। अध्याय 13 पद 7 और 8। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उजा और अहयो उस गाड़ी को हांकने लगे और दाऊद और सारे इसराइली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा सारंगी डफ झांझ और तुरियां बजाते थे। किर्यात यरीम को वाचा का संदूक लेने जाने वालों का उत्सव मनाना, बाजों संगीत और हर्ष से नाचना तथा परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाना और वीणा सारंगी डफ झांझ और तुरियां बजाकर आनंद करना आदि के दृश्य की कल्पना कीजिए। हम लोग परमेश्वर के वाचा के संदूक को यरूशलेम में लाने के लिए जाते हैं कि वो हमारे बीच में वास करे। अचानक गाड़ी डगमगाने लगी और लगा कि वाचा का संदूक नीचे गिर जाएगा। उजा जो गाड़ी का चालक था उसने उसे गिरने से बचाने के लिए हाथ लगाया और परमेश्वर का कोप उस पर भड़का क्योंकि उन्हें संदूक को छूने की सख्त मनाही थी और उजा मर गया। अचानक सारा हर्ष जाता रहा अर्थात गीत संगीत आदि सब उदासी में बदल गया। परमेश्वर ने दृश्य को बदल दिया और सारा वातावरण सिसकियों में बदल गया। दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहां कैसे ले आऊं? इसे यही छोड़ दो, मैं घर जा रहा हूं। और उन्होंने संदूक को वही ओबेद एदोम में रख दिया और उस स्थान का नाम पेरे सुजा रखा जिसका अर्थ है टूटना। परमेश्वर उजा पर टूट पड़ा, इसलिए संदूक ओबेद एदोम के घर में रखकर दाऊद यरूशलेम को वापस अपना घर चला गया। वो परमेश्वर से अप्रसन्न था क्योंकि परमेश्वर ने उसके महान उत्सव को और दाऊद की इस मनसा को कि वो संदूक को यरूशलेम में वापस ले आए रोक दिया। यहां हम देखते हैं कि एक उचित कार्य अनुचित रीति से किया गया। मात्र यही आवश्यक नहीं है कि हम उचित कार्य करें, परंतु उचित कार्य उचित रीति से करें, ये भी आवश्यक है। जब फिलिस्तियों ने संदूक पर कब्जा किया था तब वे शौल से लड़ रहे थे। आपको याद है कि वे संदूक को विभिन्न स्थानों पर ले गए और फिलिस्तीनियों के फोड़े निकले और जिस शहर में भी संदूक ले जाया गया वहां लोगों के फोड़े निकले। अंत में जब वे उसे दूसरे शहर में ले जाने लगे, शहर के लोगों ने कहा, यहां नहीं, तुम उस चीज को यहां नहीं लाओगे, हमें अपने शहर में वो चीज नहीं चाहिए। जब फिलिस्ती अपने नबियों के पास जाकर कहने लगे, हम क्या करें, उन्होंने उत्तर दिया, उस चीज को वापस भेज दो। एक बैल गाड़ी पर संदूक रखकर बैल को उधर छोड़ दो। वास्तव में बैल नहीं, गायों को उधर जाने दो। यदि गाय सीधी इसराइल की छावनी में जाती है तो समझो कि वे परमेश्वर की चीज है, उसे जाने दो, छूना मत। यदि गाय इधर उधर घूमे जैसे खो गई तो समझना कि ये एक हादसा था कि फोड़े निकलने लगे थे। उन्होंने गाय गाड़ी लेकर संदूक उस पर रखा और गायों को छोड़ दिया। फिलिस्तियों ने पीछे जाकर गाड़ी की रखवाली की और देखा कि गाड़ी सीधे इसराइलियों के मंडप में चली गई। वास्तव में जब वे इसराइली कैंप में पहुंची, वहां आनंद मनाया गया। जब दाऊद ने संदूक को यरूशलेम में सुइच्छा से लाने का निर्णय किया, तब उसने क्या किया? उसने संदूक ले जाने के लिए फिलिस्तियों का तरीका अपनाया। परमेश्वर ने व्यवस्था में आज्ञा दी थी कि जब भी संदूक को कहीं ले जाना हो तो चार याजक उसको डंडों पर उठाएं। संदूक के चारों कोनों पर चार सोने के कूंठे थे जिनमें डंडे डाले जाते थे जो संदूक को छूते नहीं थे। चार याजक उसे डंडों से अपने कंधों पर रखते थे और संदूक उनके बीच में रहता था। संदूक को ले जाने की यही विधि थी जो मूसा की व्यवस्था में दी गई थी। दाऊद उचित कार्य कर रहा था, परंतु उसका तरीका अनुचित था। वो फिलिस्तियों के संसारिक नियम का अनुसरण कर रहा था। वो उसे बैलगाड़ी में रखकर बैलों के द्वारा ले जा रहा था। उसने फिलिस्तियों की विधि अपनाई थी। मेरे विचार में बहुत बार कलीसियाएं या संस्थाएं परमेश्वर के काम को संसारिक रीतियों से करने की दोषी होते हैं। हम जो करना चाहते हैं वो तो उचित है। हम मनुष्यों को मसीह यीशु के पास लाना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए हम विज्ञापन कंपनियों को ठेका देते हैं कि वे हमारे लिए आकर्षक कार्यक्रम तैयार करें। हम एक अच्छा काम तो करने जा रहे हैं कि मनुष्यों को यीशु मसीह के पास लाएं, परंतु तरीका गलत है। परमेश्वर ने तो कभी नहीं कहा कि आकर्षक विज्ञापनों जैसे कोई काम करके मनुष्य को मसीह यीशु के पास लाए। इसी प्रकार परमेश्वर के लिए किया गया बहुत काम जो वास्तव में उचित तो है, परंतु उसके करने का तरीका गलत है। अब क्योंकि हमने काम करने का तरीका गलत अपनाया है, इसलिए हमें इसका खर्चा उठाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और पैसा इकट्ठा करने के लिए ढोंग रचना पड़ेगा। ये शर्म की बात है कि लोग परमेश्वर के नाम में धन बटोरते हैं कि उसकी सेवकाई करें। मुझे मसीही होने के नाते बड़ी परेशानी होती है जब मैं उन्हें धन इकट्ठा करने के लिए टेलीविजन का सहारा लेते देखता हूं। लोगों को प्रेरित करने का तरीका बहुत गलत है। मूसा को मिलाप का तंबू बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी। उसने क्या किया? उसने कहा, तुम जो लोग मिलाप वाले तंबू को बनाने में सहयोग करना चाहते हो, यहां आकर अपना दान जमा करा दो। वो घर घर भटकता नहीं फिरा कि तमाशा बने। लोगों ने धन लाना आरंभ कर दिया और अंत में उन्हें मना करना पड़ा। उन्होंने कहा, बस करो, बस हमारे पास काफी हो गया है, अब और मत लाओ, अब अधिक नहीं चाहिए, बस करो। पौलुस प्रेरित नए नियम में कुरिन्थियों को लिखते समय कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 9:7, हरेक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, परंतु ना कुड़के और ना दबाव से। तुम्हारा दान किसी दबाव से नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को देने के लिए लोगों पर दबाव डालना गलत है। तो भी बहुत बार हमने देखा है कि सारी चाल दबाव देने वाली चाल होती है। व्यवसायिक पत्र लिखने वालों से निवेदन लिखाए जाते हैं और वे छल से भरी भाषा में पत्र लिखकर लोगों से धन बटोरते हैं। जब लोग सेवकाई में ऐसे घृणित काम करने लगते हैं, तब इसका अर्थ है कि उनके काम में कुछ गड़बड़ है। मेरा ये अटल विश्वास है कि यदि परमेश्वर ने आपको मार्गदर्शन दिया कि वो उसके लिए प्रावधान भी करेगा। यदि आप आकर मुझसे ये कहें कि परमेश्वर उस महान सेवकाई के लिए पैसों का प्रबंध नहीं कर रहा है, जिसका बोझ उसने आपके मन में डाला है, तो मैं यही कहूंगा, परमेश्वर ने यह बोझ आपके मन में नहीं डाला है। यदि आपको धनोपार्जन के लिए सांसारिक विधियां काम में लेना हो और संसार के पीछे भागना हो, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये आत्मा का काम नहीं है। यही दाऊद ने भयंकर गलती की थी। वो एक अच्छा काम करना चाहता था, उसकी इच्छा में कुछ भी गलत नहीं था, परंतु वो उस काम को अनुचित रीति से कर रहा था। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम यीशु मसीह को धूर्त तरीकों से बेचे या हम ऐसे हथकंडे अपनाए कि लोग परमेश्वर के कार्य के लिए धन देने को मजबूर हो जाए। निर्धन परमेश्वर दिवालिया हो गया है, वो सदैव निर्धनता के कगार पर ही खड़ा रहता है। यदि आपने इस सप्ताह आकर सहायता नहीं की, तो परमेश्वर डूब गया समझो। ये कैसा परमेश्वर है जो अपने कार्यों की देखभाल नहीं कर सकता? मैं कहता हूं कि मुझे इससे हताश होती है और नीचा देखना पड़ता है। इसलिए दाऊद कहता है, ओह, इसे यही छोड़ दो, मैं इसे वापस घर नहीं ले जाऊंगा। वे उसे ओबेद एदोम के घर ले गए और तब परमेश्वर ने ओबेद एदोम के घर को अधिकाधिक आशीष देना आरंभ किया, क्योंकि संदूक उसके घर में रखा गया था। दाऊद ने फिर कहा, चलो हम संदूक को यरूशलेम में ले आए, हम फिर से प्रयत्न करें। इस बार उसने मूसा की व्यवस्था के अनुसार किया। उसने कहा, चार याजक उसे उठाएंगे और संदूक उनके बीच में रहेगा, हम परमेश्वर को बलि चढ़ाएंगे। इसलिए वे दोबारा गए, आराधना स्तुति की और मंडप के सम्मुख बलि चढ़ाते हुए वे उस स्थान से निकलते थे और वहां बलि चढ़ाया करते थे और याजक लोग संदूक उठाए थे। दाऊद मात्र सामान्य कपड़े पहने था। उसने राजा के कपड़े उतार दिए और एक अंग रखा पहना जिसमें कमर पर रस्सी बंधी थी, जैसे कि याजक सेवा के समय पहनते थे, और वो लोगों के साथ चलता था। वे नाचते गाते परमेश्वर के वाचा के संदूक को यरूशलेम में ले आए। उसकी पत्नी मीकल ने खिड़की में से देखा कि राजा राजसी वस्त्रों में ना होकर सामान्य अंग रखा पहने साधारण लोगों के साथ मिला हुआ परमेश्वर के सामने नाच रहा है, और वे सब चिल्ला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और जब उसने दाऊद को देखा तो उसे मन में तुच्छ जाना। इस तरह दाऊद ने सब लोगों के लिए बड़ा उत्सव मनाया और सबको रोटी दाकरस और मांस खाने को दिया। तब इसके बाद उसने लोगों को आशीष देकर अपने परिवार जन को आशीष देने गया। जब वो घर पहुंचा, मीकल ने व्यंग किया, तुम वहां कितने अच्छे लग रहे थे उन कपड़ों में, है ना? इन बातों से दाऊद का उत्साह ठंडा पड़ गया। वो बड़े उत्साह से आशीष देने अंदर आया था। प्रभु की बड़ाई हो, यह अद्भुत है कि कितनी आसानी से शैतान हमारे आत्मिक उत्साह को समाप्त कर डालता है। आप जानते हैं, हम प्रभु में बहुत ऊंचाई और आनंद पर जा सकते हैं। ओह प्रभु, तो कितना भला है, तो कितना महान है, परंतु शैतान ये सब चुरा लेता है। जब भी कभी आप उस उत्साहित स्थिति में होते हैं, वो मन को दुखाने वाले कार्य करके आपके जोश को ठंडा कर देता है कि आप उस जोश में ना रहे। हमें कभी कभी कोई ना कोई पैसे भेजता था और कहता था, रात के खाने के लिए कुछ ले लेना। मेरे पास उनके द्वारा भेजे हुए पैसे होते थे। मैंने उन पैसों से अपनी पसंद का एक भोजन ले लिया जिसे मैं घर ले जाकर खाना चाहता था। मैंने कहा, प्रभु मैं याद कर सकता हूं कि हम कभी किस हालत में थे कि एक सैंडविच भी खरीद नहीं सकते थे और आज ये स्वादिष्ट भोजन खरीद सके। हे प्रभु तू कितना भला है। ओ प्रभु तुझे धन्यवाद, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। मैं आराधना और धन्यवाद से भरा हुआ काउंटर के पास पहुंचा। तभी एक मोटा आदमी सिगार पीता आया और मुझे धक्का देकर मेरी ट्रॉली के आगे खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि उस आदमी को कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाऊं और कहूं, ओ मोटू तू अपने आप को क्या समझता है। मैं उसे ठीक कर देना चाहता था। मैं परेशान हो गया, इसके अलावा वो सिगार पी रहा था। मैंने सोचा ऐसा नमूना मैंने कभी नहीं देखा, इस आदमी को पाठ पढ़ाना ही होगा। तभी प्रभु ने मेरे हृदय से बात की और कहा, क्या सारा हर्ष और प्रशंसा एक सिगार के धुएं कारण विलोप हो गई। मैंने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, वो मुझसे और अधिक बदतमीजी न कर पाएगा, मुझे उसके सिगार को नहीं सूंघना है। परंतु मैं अपनी हाथ गाड़ी लेकर फिर से भंडार में चला गया कि अपना हर्ष और शांति फिर से प्राप्त कर सकूं। मैं भंडार के चक्कर तब तक लगाता रहा जब तक कि वो मनुष्य बाहर नहीं चला गया, और फिर मैं काउंटर पर आ गया और बाहर निकल गया। मैंने सोचा कितना आसान था मेरे लिए अपना हर्ष खो देना। परमेश्वर भला है, परंतु बैरी सदा साथ लगा रहता है, आनंद शीघ्र ही जाता रहता है। शैतान को मजा आता है जब वो हमारे मसीही आनंद को चुरा लेता है। मुझे निश्चय है वो युक्तियां सोचता रहता है कि मसीह में हमारे आनंद को कैसे और कितने शीघ्र दूर करें। ध्यान रखें, अगली बार जब आप मसीह में प्रफुल्लित होते हैं तब इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि शैतान कैसे आकर आपके हर्ष को दूर करने की कोशिश करता है। वो आपको चिढ़ाने वाली कोई चीज प्रयोग करेगा कि आप आत्मा से निकलकर शरीर में आ जाएं, और मनुष्य के लिए ये काम बहुत आसान होता है। यही तो शैतान का उद्देश्य है कि मैं शरीर में रहूं और तब वो मेरी देह शरीर का अपनी इच्छा से प्रयोग करे। वो इस तरह मुझे पराजित करता है। जब तक मैं आत्मा में हूं मैं उस पर महान विजय पा सकता हूं। दाऊद आत्मा में होकर आराधना करता है और अचानक उसका आनंद जाता रहता है। वहां उसकी पत्नी उसको चिढ़ाने का कार्य करती है।